पृष्ठ संख्या 58, मिर्जा गालिब, 27 दिसंबर 1797 से 15 फरवरी 1869 ईस्वी। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, इस सादगी पर कौन मर न जाए ऐ खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। नाम मिर्जा असदुल्लाह खां, उपनाम मिर्जा नौश, कवि नाम असद और गालिब। उर्दू और फारसी के महान शायर गालिब का जीवन अभावों और संघर्षों से भरा रहा है। जब वे 5 साल के थे तभी उनके पिता अब्दुल्ला खान बेग का निधन हो गया। जब 9 वर्ष के हुए तब चाचा नसरुद्दीन बेग का साया भी उनके सर से उठ गया। ननिहाल में पालन पोषण हुआ। 13 वर्ष की उम्र में उमराव बेगम के साथ उनकी शादी हुई, जो उस समय 9 वर्ष की थी। विवाह के बाद वह दिल्ली में रहने लगे। 7 संतानें हुई किंतु 15 माह से अधिक कोई भी जीवित न रह सकी। उन्होंने अपनी साली के बेटे आरिफ को अपना बेटा बनाया, लेकिन वह भी जवानी में ही मर गया। इस प्रकार गालिब की जिंदगी बचपन से ही दुखों से घिरी रही। सरकार ने जागीर छीन ली और जो पेंशन बंधी वह अपर्याप्त थी। गालिब कर्जखोरी के शिकार हुए। बाद में शराब ने उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें और बढ़ा दी। उनके चाचा की पेंशन कई नातेदारों में बट गई थी। गालिब को उसका जो भाग मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिल रहा था। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता की यात्रा की। वहीं उन्होंने कलकत्ता में उस जीवन का अनुभव प्राप्त किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लेने के परिणाम स्वरूप पैदा हो रहा था। पेंशन प्राप्ति की दृष्टि से यात्रा असफल रही, किंतु इससे समूचे देश की साहित्यिक प्रवृत्तियों को जानने में उन्हें काफ़ी मदद मिली। सन 1850 ईस्वी के आसपास उनकी नियुक्ति मुगल दरबार में मुगल वंश का इतिहास लिखने के लिए हुई, जिसका एक भाग उन्होंने फारसी में लिखा था। जौ की मृत्यु के बाद गालिब बहादुर शाह जफर के काव्य गुरु नियुक्त थे, किंतु 2 वर्ष बाद ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हो गया। बाद में 1861 ईस्वी में उनका संबंध है। पृष्ठ संख्या 59, रामपुर के राज दरबार से हुआ, जहाँ से उनको आजीवन 100 रुपये महीने मिलते रहे। नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया की घोषणा के बाद शासन ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ से निकलकर इंग्लैंड की सरकार के हाथ में चला गया और पेंशन पुनः मिलने लगी। गालिब ने अपनी पेंशन के सिलसिले में सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया और लखनऊ, कानपुर, बांदा तथा इलाहाबाद होते बनारस पहुँचे। बनारस पहुँचने पर वह बीमार हो गए, लेकिन वहाँ की आबोहवा और प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और वह शीघ्र ही अच्छे हो गए। बनारस में काफ़ी दिनों तक रहे और उन्हें शहर इतना भाया कि 40 वर्ष बाद अपने एक मित्र को लिखा कि अगर नौजवानी में वहाँ गया होता तो खानदानी यानी गृहस्थी के झगड़े ना होते तो वहीं रह जाता। बनारस की प्रशंसा में उन्होंने एक फारसी मसनवी चिरागे दायर मंदिर का दिया के नाम से लिखी, जिसमें कहा कि बनारस शंख बजाने वालों का आराधना गृह है, इसे हिंदुस्तान का काबा ही समझिए, खुदा बनारस को बुरी नज़र से बचाए, यह उल्लास का भरपूर स्वर्ग है। बनारस से वह घोड़े पर यात्रा करते हुए पटना मुर्शिदाबाद के रास्ते 20 फरवरी 1829 ईस्वी को कलकत्ता पहुँचे और अपने मुकदमे में असफल होने तथा लंबी अवधि के पश्चात 28 नवंबर 1829 ईस्वी को दिल्ली वापस आ गए। कलकत्ता में वहाँ के शायर मिर्जा कतिल के साथ उनका विवाद भी हुआ। रचनाएं नंबर 1 दीवान ए गालिब, नंबर 2 उर्द ए हिंदी पत्र, 3 उर्दू ए मुअल्ला ये भी पत्र है, 4 मकातीब ए गालिब ये भी पत्र है, 5 नादिराते गालिब ये भी पत्र है, 6 कुल्याते नज्म ए फारसी इसमें लगभग 10,000 शेर हैं, 7 पंज अहंग फारसी पत्रों तथा चुने हुए शेरों का संग्रह, 8 मेहर ए निमरोज इतिहास अपूर्ण, 9 10 तंबू 1857 के विद्रोह के समय शहर और अपनी 15 माह की स्थिति का वर्णन। गालिब की गणना उर्दू की चुनी हुई विभूतियों में होती है। वह समूची उर्दू कविता के अनुपम रत्न है। इकबाल ने उन्हें गेटे के समकक्ष माना है। जिस प्रकार उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली था, उसी प्रकार उनकी शायरी भी अत्यंत आकर्षक व प्रभावशाली और बहुआयामी है। उनके बारे में फिराक गोरखपुरी ने लिखा है कि उर्दू के काव्य गान में छोटे बड़े लाखों तारे चमक रहे हैं, लेकिन इनमें से नहीं तो अक्सर ही रोशनी को मंद कर देने वाला चांद सिर्फ एक है, और वह है मिर्जा गालिब। गालिब सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, उर्दू के श्रेष्ठ शायरों में से एक हैं। पृष्ठ संख्या 60। गालिब ने फारसी में श्रेष्ठ कसीदे भी लिखे हैं, लेकिन उनकी गज़लें अत्यधिक महत्वपूर्ण लगती हैं। गालिब ने एक जगह कहा है कि शायर को तसव्वुफ शोभा नहीं देता, लेकिन उनकी गज़लें दार्शनिक विचारों से भरी हैं। वह वहदत ए वजूद, विश्व देवतावाद अर्थात अनेक रूपों में एक ही तत्व विद्यमान है के मानने वाले हैं, यह वहदत उल वजूद और हमा उस्त उपनिषदों में सर्व खलविदम ब्रह्म से मेल खाता है। हर दिशा में, हर तरफ, हर रूप में वही ब्रह्म दिखाई पड़ता है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद। फिर यह हंगामा ऐ खुदा क्या है, सब्ज ओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। गालिब की तमाम शायरी में उदासी और अवसाद का स्वर भरा हुआ है। यह दुख उनके अपने जीवन का भी है और अपने युग का भी। यह विवशता का चरम था कि उन्हें हाथों में अर्जियां और कसीदे लेकर दर दर भटकना पड़ा तथा धनवानों और अंग्रेज अफसरों की झूठी प्रशंसा करनी पड़ी। उनकी गजलों में उदासी और नाउम्मीदी के गहरे भाव दिखाई पड़ते हैं। कोई उम्मीदवर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गालिब प्रेम और सौंदर्य के बड़े शायर हैं। वे प्रेम को ऐसा स्वरूप देते हैं जिससे पहले उर्दू शायरी अपरिचित थी। सौंदर्य के असीम आकर्षण के सामने, जिसमें अफलातूनियत कम है और जिस्मानियत दैहिकता अधिक, अत्यधिक समर्पण और श्रद्धा के बावजूद गालिब का इश्क स्वाभिमानी और मस्तकोन्नत है। उनका प्रेम काव्य विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और वह परिस्थिति पूजा से ख्वाहिश इच्छा तक की यात्रा करते दिखते हैं। वह यह भी मानते हैं कि इश्क पर कोई जोर नहीं होता। इश्क पर जोर नहीं है ऐ ओ आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के बहुत से खूबसूरत शेर कहे। एक शेर देखें, कोई मेरे दिल से पूछे मेरे तीर नीम कश को, ऐ ख्वाहिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। पृष्ठ संख्या 61। उनके कई शेर दर्द, तड़प और बेचैनी से भरे हैं। इनमें वियोग का भाव प्रबल है। ये शेर अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। उनके भीतर एक चिर विरही बैठा हुआ था जो निरंतर इंतजार करते करते निराश हो चुका था। इसी निराशा की मना स्थिति में उन्होंने कहा था कि यह ना थी हमारी किस्मत की विलासे यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। गालिब की कविता की एक और विशेषता जो हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, वह है सादगी का सौंदर्य। सौंदर्य अपने सहज और अकृत्रिम रूप में उन्हें अच्छा लगता है। विज्ञापन और चमक दमक वाले इस समय में यह बात बहुत अच्छी लगती है। यहाँ उनके दो शेर पेश हैं। इस सादगी पर कौन मर न जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गालिब की शायरी बहुआयामी और प्रयोगधर्मी है। उन्होंने राजनीतिक कविता तो नहीं लिखी, लेकिन अपनी कविता में नए युग के मिजाज को समाहित कर लिया। श्री आले अहमद सुरूर की मान्यता है कि गालिब की कला के कारण गजल प्रेम वर्णन से बढ़कर जीवन वर्णन बनती है और जीवन के विविध युगों, करवटों और क्रांतियों का साथ देने लगती है। उद्धृत दीवाने गालिब पृष्ठ संख्या 14। उनके महत्व को रेखांकित करते हुए अली सरदार जाफरी ने लिखा है कि गालिब की महानता केवल इसमें नहीं है कि उसने अपने युग की आंतरिक व्याकुलता को समेट लिया, बल्कि इसमें है कि उसने नई व्याकुलता पैदा की। उसकी शायरी अपने युग के बंधनों को तोड़ देती है और भूत और भविष्य के विस्तार में फैल जाती है। गालिब ने अपने हर अनुभव को, जो एक अत्यंत मृदुल सौंदर्य बोध रखने वाले मस्तिष्क की प्रक्रिया थी, मानवीय मनोविज्ञान की आग में तपाकर पिघलाया है, व्यापक नियम की कसौटियों पर कसा है और फिर काव्य के रूप में ढाला है। तब उसके यहाँ एक विश्व कवि का स्वर पैदा हुआ है और वह जीवन के हर क्षण का कवि बन गया है। दीवाने गालिब, राजकमल पेपरबैक, 1994, पृष्ठ संख्या 14। पृष्ठ संख्या 62। गालिब की विशेषता यह है कि उन्होंने पारस्परिक विषयों को अपने हृदय के स्पर्श से नवीनता प्रदान की और उन्हें नए अंदाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने गद्य और काव्य दोनों में नए प्रयोग किए। उन्होंने कशीदों में भी नया रंग पैदा किया। उनकी शायरी में जीवन का यथार्थ, दार्शनिक गहराई, सौंदर्य की ताजगी, प्रेम का आकर्षण और तड़प का, अनुभूति की प्रबलता और अभिव्यक्ति की नवीनता विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है।